खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, क्योंकि इस दौर में जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं कलामे पाक की रहनुमाई के बगैर, बहुत मुश्किल है कि चुनाव किया जाए या जांचा जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में जगह ब जगह बहुत दफा नबूवती तौर पर, यानी वो वाक्या जो होने को हैं, पहले ही बता दिया था कि बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ेगी, बथेरे गुमराह होंगे, बथेरों को जो भेड़े हैं वो भेड़िए के हाथ में आकर परगंदा होंगी। इसलिए पालूस रसूल, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह और पुराने अहदनामा के अंबिया इस बात के बारे में आगाह करते हैं कि बगैर कलामे पाक की रोशनी के इंसान क्या है, गुमराह है। और हमारा मुखालफ इतना शातर और इतना तेज है, इतना कह सकते हैं कि चलाक है, कि वो झूठ को ऐसे मढ़कर, जैसे कहते हैं कि सुनियारा, किसी नकली पत्थर को अगर वो मुंदरी में इस तरीके से मढ़ दे तो देखने में लगती है कि वो बहुत ही कीमती और नायाब है। सो वो इस तरह झूठ को मढ़कर और बनाकर पेश करता है कि जिससे ईमानदारों को गुमराही का सामना होता है। इसलिए कलामे पाक की रोशनी में हम सबको जिंदगी बसर करनी है। इसलिए हम नया अहदनामा इफ़सियों 5 बाप उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंत का बंदा पालूस कहता है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए तरबियत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ईमानदारों से ये ख्वाहिश करता है, ये चाहत करता है कि वो गौर करें कि किस तरह चलते हैं। और हम पिछले दिनों से इस लफ्ज़ पर, इस जुमले पर, इस आयत के हिस्सा पर गौर कर रहे हैं कि गौर से देखें कि किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, कि किस तरह हमारी जिंदगी के अंदेशे हैं, तरीका कार है। हम ईमानदारों को इस दुनिया में जो तारीकी से पुर है, तारीकी दिन ब दिन बढ़ रही है, और तारीकी के बारे में पालूस रसूल कहता है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो। हमें दनाओं की मानद जिंदगी बसर करने की जरूरत है इस बेइल्मी के दौर में, जिसे कह सकते हैं बेइल्मी नहीं बल्कि जहालत के दौर में। जहालत से मुराद यानी कि गलत इलम का होना, यानी कि सच्चाई से दुरुस्त वाकफियत ना होना। जब जहालत को देखते हैं तो बहुत दफा पढ़े लिखों को भी, इलम रखने वालों को भी जहालत का सामना है। सो जहालत के लिए सादा तौर पर के बहुत दफा इलम रखते हुए उससे ना वाकफियत होना, या उस सच्चाई से कोई शख्सी तलक ना होना। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, पालूस रसूल कहता है ईमाल की किताब में, कि खुदा जहालत के वक्तों से लेकर अब तक तुम्हारी रहनुमाई करता रहा है। वो खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता, वो खुदा इंसान के अंदर रहता है, वो खुदा इंसान से चाहता है जिसने उसे जिंदगी और जिंदगी की सांसें और तमाम नेमतें दी है, कि उसकी मर्जी को जाने। सो हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं वो दौर कैसा है, मेरे साथ निकालें यसाया उसका 5 बाप उसकी 20वीं आयत। अब्रानी दौर के मुताबिक आज भी जब ये लफ्ज अफसोस का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद है मुर्दा हालत, जिसके बारे में पालूस रसूल यहां भी कहता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यसाया उसका 20 बाप उसकी 5 आयत। अगर कोई निकाले तो वो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। यसाया 5 बाप उसकी 20 आयत से, 5 बाप 20 आयत, 5 बाप 20 आयत से। यहां पर यसाया नबी 5 दफा अफसोस का लफ्ज इस्तेमाल करता है अपनी कौम की हालत को देखकर, जो जानते हुए जहालत की हालत में गए। यसाया 5 बाप उसकी 20 आयत। हाँ जी, आप पढ़
उन
दें।
पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शेरनी के बदले सॉरी शेरनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शेरनी रखते हैं।
शुक्रिया जी। अफसोस उन पर जो नेकी को बदी और बदी को नेकी कहते हैं। आज हम इस दौर में हैं, ये वो दौर है जो उस दौर में पालू खुदा का बंदा यसाया उन पर अफसोस करता है। आज भी हम अफसोस से कह सकते हैं कि लोग बदी को क्या कहते हैं, नेकी। और ये किस लिए है, इसकी जड़ क्या है? वो बदी का सहोकार, जिसे कह सकते हैं वो बदी का तालब जो बदी करवाता है, जो बुरे दिन लाना चाहता है, जो चाहता है कि बदी करवाए। तो यहां पर 5 दफा अफसोस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 18वीं आयत में उन पर अफसोस जो बतालत को मद्देनजर रखते हैं, जो बदकारी करते हैं। फिर 20वीं आयत में उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और जो नूर को नूर की जगह तारीकी को जगह देते हैं, और तारीकी की जगह नूर को ना करते हैं। और फिर 21वीं आयत, अफसोस उन पर जो अपनी नजर में दानिशमंद बनते हैं और अपनी निगाह में बहुत बहुत ही इलम वाले बनते हैं। और आगे कहता है, उन पर अफसोस जो मैं पीते हैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। अफसोस यहां पर पालूस रसूल करता है कि उन पर जो बदी को नेकी कहते हैं। आज हम जिस दौर में हैं, इसी दौर में हमें इस बात का सामना है कि लोग बदी को नेकी का नाम दे रहे हैं। इसलिए हमें पालूस रसूल कहता है, पास गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हमें इन लोगों के हम शक्ल नहीं बनना, हमें इन लोगों के पैरोकार नहीं बनना। इसलिए हमें बहुत ही निगाबानी से, फिक्रमंदी से, होशियारी से, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, याद है ना आपको, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेज रहा हूं, सांप की तरह होशियार, सांप की तरह होशियार और कबूतर की मानद बोले बनो। मत्ती की इंजील उसके 10वें बाप में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले बनो, ताकि हम जान सके कि किस तरह चलना है। सो यहां पर लफ्ज गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, यानी कि बड़े एहतियात से देखो कि तुम किस तरह जिंदगी बसर करते हो। 17वीं आयत मेरे साथ देखें, इफिसियों 4 बाप उसकी 17वीं आयत। यहां पर पालूस क्या कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावन में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आयदा को उस तरह ना चलना। हम ईमानदारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हम कह सकते हैं कि हमारी पीठ के पीछे एक बड़ा टारगेट है जिस पर अबलीस का निशाना है। वो ईमानदारों के पीछे लगा हुआ है, उसे गैर ईमानदारों से कोई तलक नहीं है। उसे पता है कि ये उसके हैं, उसे पता है कि वो पहले ही गुमराह हैं, उसे पता है कि वो अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं करते, उसे पता है कि गैर ईमानदारों को उसने पहले ही कैदी बनाया हुआ है। हम सब के माथे पे कह सकते हैं, हमारी पीठ पे कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम पूरा क्या है, मसीह के नुमाइंदे और इब्लीस के लिए क्या है, टारगेट, यानी निशाने की जगह के वो निशाना लगाता है कि कब हमें गिरा मारे। इसलिए हमें गौर से चलना है कि किस तरह जिंदगी बसर करते हैं। हमारी इस लड़ाई में, हमारी इस जंग में, ये जंग ये नहीं बर्छी और भाले की, तलवार और छुरी की नहीं, बल्कि रूहानी जंग है। इस जंग में हम सबको जोरावर बनने के लिए अपने कामल करने वाले यीशु मसीह को तकने की जरूरत है। तो पालूस रसूल कहता है, पस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो। वक्त बुरा है, वक्त को गनीमत जानो, वक्त की अहमियत को जानो। गनीमत से मुराद जो हम मतलब निकालते हैं यूनानी या इंग्लिश जबान से, रिडीम द टाइम, यानी कि टाइम को खरीद लो, टाइम को अहम जानो, टाइम की अहमियत को समझो, गनीमत जानो, बहुत अहम जानो, क्योंकि काम वक्त है, क्योंकि दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों में हमें बहुत सी बातों का सामना है, बहुत सी सोचों का सामना है। इसलिए हमें गौर से देखना है कि हम किस तरह चलते हैं। आए अपने अगले बाप में चलते हैं, और वहां पर देखते हैं कि इस गौर में चलने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है। इफिसियों 6 बाप उसकी 10 आयत, हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पर गौर करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत कुछ सीखने को है। इफिसियों 6 बाप उसकी 10 आयत, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावन से बाहर नहीं बल्कि खुदावंद में। क्या कहा गया है, और क्या कहा गया है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन से जुदा होकर हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उसमें सब कुछ करना है। इसलिए पालूस कहता है, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। उसका मंसूबा क्या है, अब्लीस का, याद है किसी को, खुदा ने यीशु मसीह का पैगाम यूहन्ना के वसीला से 10 बाप उसकी 9 और 10 आयत, दरवाजा मैं हूं, चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने को। अब्लीस किस लिए आता है, मार डालने, हलाक करने और तबाह करने को। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। 2 दफा लफ्ज जिंदगी का इस्तेमाल किया, जिंदगी पाओ, हमेशा की जिंदगी, और कसरत से पाओ, यानी इस जमीन पर कामयाब जिंदगी, जिसे यूनानी में कहा जाता है जोए लाइफ, ऐसी जिंदगी जो खुदा के रूह की रहनुमाई में गुजारी जाए। अब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि, क्यों हमें अब्लीस के मंसूबों में कायम रहना है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। सो तारीकी की हाकमत और उन तमाम इख्तियार वाली शरारत की फौजों से जो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है, सो हमें उनसे क्या है, मुकाबला है, उनके साथ हमारी लड़ाई या कुश्ती है। सो उनसे लड़ने के लिए पालूस रसूल कहता है कि किन चीजों की जरूरत है। 13वीं आयत, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, इस वास्ते, इस वजह से, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। क्या लिखा है, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। ये बुरे दिन का लफ्ज जहां कहीं भी बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है, शरीर का मुकाबला कर सको, हमारी हमें बुराई से बचा। लफ्ज क्या है वहां पर जब देखते हैं असली जबान में, हमें शरीर से बचा, बुरे दिन में मुकाबला कर सके, यानी कि बुराई का मुकाबला कर सके। सो कौन से दिन है? अफसोस उन पर जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और तारीकी की जगह नूर को जगह देते हैं, और शीरियानी की जगह तलख मजाजी करते हैं। सो इस दौर में जैसे बहुत से लोग, कल हम सुबह जब वादत से फारग हुए तो भाई एक बेटा शकील आ गया, उसने हमारे शहर में हमारी बस्ती में एक टोला आया हुआ है, वो लोगों को कहते हैं कि मैं यसू हाजिर कर दिया, मेरे में यसू है, मेरे में ये है, और वो लोगों को क्या कर रहे हैं, हर एक को बता रहे हैं कि तुझमें खबीस है, तुझमें खेतरपाल है, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने कभी खेतरपाल का लश्कारा तक भी नहीं देखा कि इतनी गंदी तस्वीर वो अबलीसी दौर में है, यानी अबलीसी ग्रोह में इतनी गंदी वो तस्वीर है, और वो कहते हैं कि उसमें खेतरपाल है, हर एक में वो हर एक को खेतरपाल कहते हैं, हर एक को क्या कहते हैं, तुझमें ये है वो है, ये है वो है। अबलीसी तस्वीरों के जब हम देखते हैं असरात बाइबल मुकद्दस में, याद है आपको वो बंदा जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, कहां पर रहता था? बाहर कब्रों पर रहता था, उसमें एक लश्कर था, 6,000 बदरू हैं, एक लश्कर में कितने फौजी होते थे? 6,000 बदरू हैं, बामुताबक बाइबल मुकद्दस और रोमी दस्ते के। तो वो एक मिनट में कह देते हैं जी कि उनमें ये है वो है वो है, और उसके असरात तो नजर आते नहीं। जब बीमार होगा तो बीमारी के असरात क्या है? बंदा कमजोर होगा। अगर बंदे में खेतरपाल हो तो मैं कहता हूं कि हम में से कोई भी उसके नजदीक खड़ा नहीं हो सकता, और वो अपने घर में भी नहीं रह सकता। खेतरपाल इतनी गंदी तासीर है कि वो किसी का उसे शर्म ही नहीं। सो वो लोग जो खुदा के नाम से आते हैं, कहलाते हैं, यीशु मसीह ने कहा था ना बथेरे मेरे नाम से आएंगे, वो आते हैं मसीहियों को जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो मसीह के कलाम की क्या कर रहे हैं? मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पालूस को जानते हैं कि वो खुदा का रसूल है, तो उसने कहा कि तुम खुदा का मकदस हो। अगर हम पालूस रसूल को खुदा का रसूल समझते हैं, तो वो कहता है कि तुम पर पाक रूह की मोहर लगी है। पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की हुकूमत अगर किसी मोहर, किसी दुकान पर मोहर लगा दे, तो कोई आम बंदा उस मोहर को तोड़ नहीं सकता। कर देंगे ना, जिन्होंने कहते कि सील कर देती दुकान, हम सब पर रूहुल कुद्दस की सील लगी हुई है। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी हमको हो नहीं सकता, और खासकर ईमानदार होते हुए अबलीस ईमानदारों में घुस जाए, हरगिज नहीं। बामुताबक बाइबल मुकद्दस नहीं, बल्कि बहुत से पादरियों के मुताबिक ये दुरुस्त है कि जी आप में ये बदरू है, इसलिए आप मुझे अपनी पूरी दाय यकी दें तो आपकी बदरू जाती रहेगी, आप मुझे अपना ये दे दें, वो दे दें, तब आप ठीक हो जाएंगे। सो इस दौर में है शरारत की उन रूहानी फौजों से हमारा मुकाबला है, और क्या लिखा है? इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो और मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पहली बात कौन सी है? पस सच्चाई से अपनी कमर कस के। सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है। खुदा का कलाम क्या है? सच्चाई। इसकी बुनियाद पर हमें लड़ाई लड़नी है, रूहानी रंग। सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रासबाजी का बख्तर लगाकर, बख्तर लगाकर यानी कि रासबाजी के कामों से बदी और शरीर के तमाम झूठे तीरों का मुकाबला करना, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। पैगाम क्या है? सुलह की खुशखबरी के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए उसकी खुदा के साथ सुलह हो जाए, यानी कि वो दोजक में ना जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, ईमान की सिपर लगाकर यानी कि ईमान से जिंदगी बसर करना, ईमान के उस चट्टान पर कायम रहना जो यीशु मसीह है, जिससे तुमको उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे, और निजात का खौद, निजात का खौद जिसे कहते हैं कि हेलमेट, खौद जिसे कहते हैं कि टोपी, अपने सिर को बचाने के लिए पुलिस वाले डालते हैं कि कोई अगर पत्थर मारे तो उसे नुकसान ना हो। हमारी निजात का खौद क्या है? हमारा खौद क्या है? निजात। और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो। सो हमें इस जमीन पर गौर से जिंदगी बसर करनी है। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, मैंने कल बाबूजी को बताया कि बाबे फिरोज का जो पोता है उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाते वो गिरना शुरू हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? पादरी साहब आपको नहीं पता लगा आपसे कुव्वत निकली है? मैंने कहा जी नहीं, मुझ में से कुव्वत नहीं निकली जी। किस तरह बाइबल के हवालों को लेकर यीशु मसीह ने कहा था ना, मुझ में से कुव्वत निकली क्योंकि किसी ने मुझे छुआ और उसे शिफा मिल गई और वो मुझे यीशु बनाए जाते। आप में से कुव्वत निकली। अबलीस के ये बड़े मीठे मीठे झूठ होते हैं जो बंदे की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पस गौर से देखे कि किस तरह चलते हैं। आए हम खुदावन के हुजूर झुके हैं।